दुनिया में अल्लाह ताला ने हर चीज में खासियत रखी है, बाजों में मुफीद है और बाजों में मुजर है, बल्कि एक ही चीज में जो खासियत रखी है, एक तरफ वो खासियत फायदा देती है तो दूसरी तरफ नुकसान भी पहुंचाती है। जैसे आग है, आग में जलाने की खासियत और एक तरफ ये जलाने में खास की खासियत है और दूसरी तरफ पकाने की भी खासियत, उसी की से खाना पकता है। फिर शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दुनिया में किसी चीज को हकीर मत समझ, किसी भी चीज अल्लाह ताला ने दुनिया में जो कुछ पैदा पाया फरमाया, अगरचे सुअर भी है क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन चूंकि उसको अल्लाह ने पैदा फरमाया, इसको ये ना कहे कि अल्लाह ने ये चीज बेवजह पैदा कर दी, ऐसा करना। अब उसकी क्या राज है, क्या हिकमतें हैं, वो अल्लाह जानते हैं, बेटा सामने हो तो ऐसे अच्छा सूरज आ रहा है, वो अल्लाह ताला जानते हैं कि किस चीज में क्या राज है। हजरत ने सुनाया कि एक हकीम साहब को ऐसे एक बात पैदा हो गई कि जो पखाने के कीड़े होते हैं ऐसी बेवजह पैदा की, ये ना होते तो ठीक। अल्लाह की शान हुई कि उनको कोई बीमारी लग गई, हकीम थे, इलाज शुरू किया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हकीम को भी हकीम की जरूरत होती है, डॉक्टर को भी डॉक्टर चाहिए होता है, शेख को भी शेख चाहिए होता है, शेख अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, उसको भी अपने रूहानी अमराज के और अखलाती बीमारियों के इलाज के लिए दूसरा शेख चाहिए, हकीम को हकीम चाहिए। समझाया कि अगर किसी डॉक्टर के गुर्दे में पत्थर ही पैदा हो जाए, अब उस और वो खुद गुर्दे का डॉक्टर है, डॉक्टर खुद गुर्दे का डॉक्टर है और वो तमाम डॉक्टरों के तमाम मरीजों के जिनके गुर्दे में पत्थर ही पैदा हो गई है, तो वो उस गुर्दे की उनके गुर्दे से पत्थर ही निकालता है वो ऑपरेशन के जरिए से, लिहाजा वो माहिर अमराज है, गुर्दा है। और जिन मरीजों के गुर्दे में पत्थर ही पैदा हो जाती है वो डॉक्टर उनके गुर्दों से पत्थर ही निकालता है, खुद डॉक्टर है लेकिन उसके अपने गुर्दे में पत्थर ही हो गई। और इस बात से तो सभी इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो गुर्दे का डॉक्टर हो उसके गुर्दे में पत्थरी ना होगी, कोई डॉक्टर ये दावा नहीं कर सकता कि चूंकि मैं गुर्दे का डॉक्टर हूं मेरे गुर्दे में पत्थरी नहीं हो सकती, डॉक्टर का ये दावा फजूल है, वो कर ही नहीं सकता। लिहाजा उसी गुर्दे के डॉक्टर जो अपने जो दूसरे मरीजों के गुर्दों में से पत्थरी निकालता है उसके अपने गुर्दे में पत्थरी पैदा हो गई, तो सारी दुनिया के लोग इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि अपने गुर्दे से वो खुद पत्थरी नहीं निकाल सकता, उसको दूसरा गुर्दे का माहिर डॉक्टर चाहिए जो कि उसके गुर्दे से पत्थरी निकाले। बस फरमाया यही है बात कि कोई शेख है जिसके मुरीदीन भी है उसको अपने अमराज की बीमारी के लिए दूसरा शेख चाहिए और उसको जरूरत है, लिहाजा वो ये दावा नहीं कर सकता। अगरचे उसके यहां तक कि अगर किसी डॉक्टर के गुर्दे में पत्थरी मौजूद है तो वो दूसरों के गुर्दे का इलाज फिर भी कर सकता है और उसके इलाज से दूसरों को फायदा होगा लेकिन उसको फायदा नहीं होगा। ये अजीब बात है। लादा वो एक शख्स, वो एक शेख है, उसको कोई बीमारी है और कोई ऐसी नहीं इसमें बात, क्योंकि याद रखना कोई अल्लाह वाला वो मासूम नहीं होता। इस्मत ये एक मुस्तकिल अकीदा है कि मासूम होना यानी गुनाह का तसव्वुर भी ना होना, गुनाह का ख्याल भी ना आना, ये अकीदा सिर्फ और सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ खास है। दुनिया का कोई आलिम, कोई शेख, कोई अल्लाह वाला, कोई दीनदार, कोई इबादत गुजार वो मासूम नहीं हो सकता। तमाम औलिया अल्लाह की अजमत सर आंखों पर, लेकिन ये मासूम नहीं थे। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम थे। जब साहबा मासूम नहीं थे, साहबा को भी क्या दर्जा, अल्लाह अकबर, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन साहबा को भी मासूम कहने की इजाजत नहीं है। ये सिर्फ वो चीज है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ खास है। तो लगा एक शेख, उसके अंदर भी कोई बीमारी है, कभी उसके दिल में भी बड़ाई आ सकती है कि देखो लोग मेरी जूती उठाते हैं, लोग मेरे हाथ चूमते हैं, तो उसके दिल में भी आ सकती है। अब उसको अपने इलाज के लिए अगर कोई दूसरा मरीज आया कि उसने कहा हजरत मेरे अंदर तकब्बुर का मर्ज है, मेरे अंदर बड़ाई है, तो वो उसके इलाज तो कर देगा, लेकिन उसके इलाज करने से उसके दिल से तकब्बुर नहीं जाएगा। फिर उसको चाहिए दूसरा डॉक्टर, वो अपने शेख के पास जाएगा कि हजरत मेरे अंदर ये बीमारी मौजूद है, मेरे अंदर शहवत है, मेरे अंदर गुनाह के तकाजे हैं। इससे पता चला कि शेख को भी शेख की जरूरत होती है। ये बात मेरे शेख ने फरमाया और साथ में ये भी फरमाया कि अगर एक आदमी एक डॉक्टर से इलाज करा रहा है और उस डॉक्टर का इंतकाल हो गया तो उसकी जनाजे में भी जाएगा और उसके तीजे की बिरयानी भी खाएगा, उसके मरने का गोश्त भी खाएगा। और उसके कब्र पर जाकर वहां दुआ भी करेगा, उसके लिए दुआ मांगेगा, कुरान पाक का हिसाले सवाब भी करेगा। लेकिन क्या वो ऐसा करेगा कि जी मेरा ये डॉक्टर था, अब ये मर गया, मैं किसी से इलाज नहीं कराऊंगा। ये जाएगा उसके पास ही ब्लड प्रेशर का आला और स्टेथोस्कोप लेकर के, आप मेरे डॉक्टर साहब कब्र में आप ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ऐसा नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, तो उसके इंतकाल के बाद दूसरे डॉक्टर को तलाश करेगा। इसलिए मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों ने नसीहत फरमाई, शेख का इंतकाल हो गया तो शेख है वो भी दुनिया से जाएगा। अब ये नहीं पता कि मुरीद पहले जाएगा या शेख पहले जाएगा। कितने सहाबा थे जो जिनका जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, बल्कि ऐसे खुशकिस्मत सहाबा भी थे कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से, दस्ते नबूवत से जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफन फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं ऐसे एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्लाह ज़ुल बिजादैन, फ़ज़ाइल आमाल में उनका तज़किरा भी है और लोग उनको बजादीन पढ़ते हैं। ये बिजादैन है, दो चादर वाले, बिजादैन, बिजादैन है सर, चलो उर्दू में बिजादैन भी बोल सकते हैं लेकिन बजादीन नहीं बोल सकते। इसलिए मौलवी चाहिए होता है। तो अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं रात का वक्त था तो जन्नतुल बकी के पास मुझे चिरागों की रोशनी मालूम हुई, समझ गया कोई जनाजा है। फरमाते मैं दौड़ कर गया तो देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में तशरीफ फरमाए और फरमा रहे लोग अब्दुल्ला का जनाजा मुझे दे दो। ये वो सहाबी थे कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों से, और ये वो थे जिनके पास ना मकान था न जिनके मकान नहीं था तो एयर कंडीशन क्या होता, गाड़ी नहीं थी, कारोबार नहीं था, डंपर नहीं था, सोना चांदी नहीं था, एक मिस्कीन और गरीब आदमी थे, लेकिन अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। उस मोहब्बत का इनाम इंतहा में देखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उनको दफन फरमा रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे इतना रश्क आया उन पर, इतना रश्क आया कि मेरा दिल चाहा कि काश मैं होता। अब आप बताइए, लोग कहते हैं ना जी मरने में भी मजा आता है। लोग क्या कहते हैं, मरने में भी मजा आता है क्या? तो अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को देखो कि तमन्ना कर रहे काश मैं होता। क्यों? जब मोहब्बत पैदा हो जाए तो मरने में भी मजा आता है। अभी हमें मरने से इसलिए डर लगता है, अभी हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं है। जिस दिन हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा हो जाएगी, उस दिन हमें मरने में भी मजा आएगा। जब मरने में मजा आएगा तो जीने का क्या मजा होगा? अभी तो जीने का मजा भी नहीं है, अभी तो जीने का मजा भी नहीं है, तो मरने का क्या तसव्वुर होगा? तो बहरहाल शेख है वो भी इंतकाल होगा, लेकिन उसके इंतकाल के बाद दूसरा शेख का, जैसे इस फकीर ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, फौरन दूसरा शेख अल्हम्दुलिल्लाह यतीम नहीं हुआ। तो वो जो हकीम साहब थे उनको ये एतराज पैदा हुआ कि जो अल्लाह ने पखाने के कीड़े पैदा फरमाए हैं ये बेकार है। आपस अर्ज कर रहा था, दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं है, हमें उसका मसरफ मालूम नहीं, लेकिन उसको चूंकि अल्लाह ने पैदा किया इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि ये बेकार है। गर्मी का मौसम हो, खुश्की आ गई, बारिश हो गई, बहार है, खिजा है, सब अल्लाह की मर्जी से है। इसलिए कभी किसी वक्त को बुरा ना कहे, किसी जमाने को बुरा ना कहे। अगर कोई कहेगा यार गर्मी में गर्मी लगती है तो सर्दी होनी चाहिए थी, लोग सर्दी से तंग आ जाते हैं, सही कह रहे होंगे? नहीं, बाजों को सर्दी पसंद होती है, बाजों को बाज लोग कहते हैं यार सर्दी नहीं चाहिए गर्मी होनी चाहिए, वो भी गर्मी से तंग आ जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने रखा, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी जो है बहार है, कभी बारिश है, कभी हवा खूब चलती है, कभी हवा बंद कर लेते, कभी मौसम में नमी खूब होती है, कभी खुश्की होती है। बस बंदे का काम यह है कि अल्लाह ताला की मर्जी पर राजी रहे। वो जैसा मौसम दे दे, वो जो दे दे, ये है बंदगी का वो मेयार जो हमें हासिल करना है कि हम हर वक्त अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। तो उन हकीम साहब को एक बीमारी लग गई, बड़ा इलाज किया, हकीम थे खुद इलाज शुरू कर दिया। जैसे पाकिस्तानी कौम तो आधी डॉक्टर खुद होती है, और ये जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ये पौने डॉक्टर होते हैं। कौम आधी डॉक्टर और ये मेडिकल स्टोर वाले पौने डॉक्टर होते हैं। तो जो पूरा डॉक्टर होता है उसके बाद लोग कम ही जाते हैं, उस वक्त जाते जब मरने लगते कहते जब अपने इलाज से फायदा नहीं हुआ, पहले अपना इलाज शुरू खुद करते हैं, फिर मेडिकल स्टोर वाले से मशवरा करते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। ये हमारे कौम का मिजाज है, बहरहाल अच्छा नहीं है। तो अब हकीम साहब ने अपना इलाज किया, फायदा नहीं हुआ, अब दूसरे हकीमों से इलाज क्यों शुरू किया, फिर भी फायदा नहीं हुआ। जब इंसान बीमार होता है फिर दस्त के पास जाता है, उनका भी यही हाल हुआ, लेकिन उनको तो अल्लाह ताला ने सबक सिखाना था। इसलिए बीमार हो खामोशी से हकीम के पास या डॉक्टर के पास चला जाए, ये मसला है। और हदीस शरीफ में आता है कि अपने मरीजों का इलाज सदके से करो, ये काम हम नहीं करते। हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे, एक्सरे भी कराएंगे, रिपोर्टें भी कराएंगे, और डॉक्टर की फीस भी देंगे, दवा भी खाएंगे, लेकिन सदका नहीं देते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। अब एक आदमी गरीब है, एक रुपया दे सकता है सदका? एक चाय की प्याली के पैसे तो दे ही सकता, नहीं तो एक नस्वार की पुड़िया के पैसे तो दे सकता है ना। भाई दो चार रुपए देना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, दो चार रुपए तो दे सकता है, गरीब है दो चार रुपए दे, जिसको अल्लाह ने दिया वो 2000 रुपए दे, लेकिन सदका दे, ये बड़े काम की चीज है, देना चाहिए सदका। मरज का इलाज सदके से करें, बीमार हो अल्लाह के रास्ते में दे दे। अब वो हकीम साहब एक हकीम के पास पहुंचे, इलाज शुरू किया, अल्लाह ताला ने उसमें शिफा देना शुरू की, ये अल्लाह की तरफ से। खैर हो चुकी, वो भी जानते थे हकीम है, तो मरीज हकीम ने पूछा कि हकीम साहब आपने ये जो दवा भरा है इसके अज्जा क्या है, किस चीज से दवा तैयार हुई, इंग्रेडिएंट्स। हकीम साहब ने कहा और अज्जा तो दूसरी जगह, सबसे ज्यादा जो गालिब इसमें अज्जा है, जुज है, जो जो चीज है इसमें, वो पखाने के कीड़े हैं। अब उनके कान खड़े हुए, अल्लाह अकबर, कि क्यों मैं बीमार हुआ, कि मेरी जबान से जो निकला था कि अल्लाह ताला ने ये पखाने के कीड़े आबस फजूल और बेकार पैदा किए। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, तवा की, शिफा याब हो गए। इसमें एक सबक और भी निकला, हम लोग अपनी जबान से जुमले निकालते रहते हैं, फिर बाद में उन जुमलों पर पकड़ होती है, हम कहते हैं यार ये क्यों हुआ, भूल जाते हैं कि जो हमने नालायकी की होती है ना, अपनी जबान से जो अल्फाज निकाले होते हैं ना, उन अल्फाज पर हमें पकड़ होती है, इसलिए अपनी जबान को खामोश रखना ये अच्छा होता है, खामोशी में फायदा है। कोई ऐसी बात ऐसी जबान से निकाल दी जो अल्लाह ताला की नाराजगी का जरिया बन गई और मूजिब आजाब बन गई, फिर बाद में रोते फिरते, इसलिए अपनी ये जबान को आजाद न छोड़े कि जो चाह जबान से निकाल दिया बाद में रोते फिरते। इसलिए कोई मरीज है, कोई मजबूर है, उसको हकीर भी ना समझे, मरीज है कोई मजबूर, उसको हकीर भी ना समझे, तो बाद मरता इंसान है किसी को कहता देखो ये ऐसे बेवस, खुद उसमें मुबतला होता है, उसको होश ही नहीं होता कि आखिर मुझ पर यह आजाद क्यों आया, वो उसकी कोई बात होती है जिस पर पकड़ होती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने नसीहत की, आज इससे रहना ये अच्छा है, अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, अपनी मेहरबानी फरमाए, और अल्लाह ताला अपने करम से हम सबको आफियत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला अपने करम से हर मुसीबत से हर हर अल्लाह ताला खास तौर पर हर गुनाह से हिफाजत नसीब फरमाए, हर गुनाह से पाक। अब देखो ये बदनजरी का ही गुनाह है, औरतों को देखना, हम लोग गुजरते हैं बदनजरी कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ, जिसको चाहे लाख देख ले कोई नहीं आती, कोई नहीं बैठती, लेकिन अल्लाह ताला को ये देखना पसंद नहीं है, और हम इस गुनाह को बड़ा मामूली समझते हैं कि किसी की औरत को देख लिया, ऐसे ही वो लड़के जिनकी दाढ़ी मूछ ना आई है उनको देख लिया, अल्लाह ऐसे बनाता, फायदा कुछ नहीं है। हाँ काम की चीज क्या है, वो अपनी बीवी है उसको देखे, उसी से फायदा होगा ना, और दूसरों की बीवियों को देखना, दूसरी औरतों को देखना कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला इस गुनाह से भी बचाए और हर गुनाह से बचाए, चाहे आंख का हो, चाहे जबान का हो, चाहे कान का हो, चाहे हमारे जिस्म का हो, चाहे हमारे ख्यालात का हो, अल्लाह हर गुनाह से अल्लाह ताला हम करो फजल फरमाए, मेहरबानी फरमाए। वा आखिर दुआ अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह।